लेकिन इससे पहले कद लग गया तो इसने इस माजी को मुस्तकबिल में डाल दिया। मतलब क्या है? कद अफलहल मोमिनून, बेशक फलाह पाई ईमान वालों ने, यानी ऐसा ही होगा, यकीनन ऐसा होगा, लाजिमन ऐसा होगा। ऐसा यूनिवर्सल ग्रोथ यानी इसकी शिद्दत है, बहुत बड़ी जोर दे दिया, ऐसा ही होगा। क्या के ईमान लाने वाले फलाह पाएंगे। अगर आप लफ्ज को देखें ना, कद अफलहल मोमिनून, यानी अगर आप इस जुमले को देखें तो इसका एक बड़ा ठेठ सा तर्जमा बनता है, काम निकाल ले गए अहले ईमान, यानी अहले ईमान के काम हो गए। कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है उस वक्त के हालात के मुताबिक। बाहर तो लग रहा था कि वो सरदार कामयाब है जो अपनी जो दराहट कायम कर रहे थे और माल और ओहदों और अथॉरिटी की वजह से बड़े बने हुए थे। क्या उस दौर में बिलाल कामयाब दिखते थे, जिनके सीने पे पत्थर पड़े होते थे और जो किस तरह से कांटों पे भी लिटाए जाते थे? लेकिन आसमान से फैसला ये है कि ईमान की वजह से, इन मुश्किलात में जमने की वजह से बिलाल कामयाब हो गए। अब आप अल मोमिनून के नीचे सहाबा के नामों की लिस्ट लगा लें, कद अफलह अल अबुल बकर, कद अफलह उमर, कद अफलह अली, कद अफलह बिलाल, उमेर, उमार, सब के नाम लगाते जाएं तो गोया के ईमान कामयाबियों का रास्ता खोलता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं लफ्ज अफलाह में फलाह को। फलाह क्या लफ्ज है? पीछे भी पढ़ा, हैरत की बात है, हमने दूसरे तीसरे दिन के सबक में पढ़ लिया था ये लेसन सूरत बकरा के पहले रुकू में, उलाए कहुमल मुफलिहून। पर उस वक्त आप न्यू बॉर्न बेबी थे, सिर्फ तीसरा दिन था आपका कुरान के साथ ताल्लुक के साथ। 17 पारे पढ़ाने के बाद आज फिर अल्लाह आपको दोबारा बता रहे हैं कद अफलहल मोमिनून। एक तो दोहराई भी है और दूसरा बाप का आपका लेवल अल्लाह चेक करना चाहते हैं। पहले दिन दूसरी तीसरी क्लास में आपने कामयाबी की जो चीर फाड़ देखी थी, मुफलिह और किसान का फर्क देखा था, याद आ रहा है कि कैसे किसान जमीन को फाड़ता है, वो ही काम मोमिन करता है। ये जुमला जरूर लिखिएगा कि किसान मट्टी पे मेहनत करता है ना, जमीन को खोदता है, कुरेदता है, फिर उसके अंदर बीज डालता है और बीज से फल उगता है। यही काम जो किसान जमीन पे करता है, मोमिन अपने इस मट्टी के वजूद पे करता है। हम भी तो मट्टी से बने हैं ना, ये खाकी वजूद है हमारा, हम भी इस वजूद के ऊपर मेहनत करते हैं तो इसके अंदर ईमान का बीज डलता है, तो फिर हमारे किरदार के खूबसूरत फल सामने आते हैं। बस लोग कहते हैं हमलों से क्या होता है, नियत तो अच्छी है ना, तो इसको किसान से ही पूछ लीजिए। किसान कहता है मेरी नियत बहुत अच्छी है, बस ना मेहनत करता है और बीज भी बहुत अच्छा है मेरा, चले बीज को नियत बना ले। किसान की नियत किसान का बीज है। क्या खाली बीज को खरीदता है और क्या बीज से पेट भरता है और क्या बीज में वो खुशबू और बीज में वो टेस्ट होता है जो फल में होता है? नहीं, वो सच्चे बीज यानी अच्छी नियत पर जब मेहनतों का हल चलता है, फिर उसके बाद इंसान कामयाबियां हासिल करता है। इसी तरह मेरी और आपकी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम उस पे मेहनत नहीं करेंगे, हमें उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। और फलाह कहते हैं उस कामयाबी को जिसका नतीजा तवक्कुआत से बहुत ज्यादा निकले, मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। सोचिए, आपने मैट्रिक के इम्तिहान दिए, आप सोचते हैं कि 900 में से 625 से 30 नंबर या 700 तो आ ही जाएंगे, और जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो आप 850 की सीरीज में खड़े थे। ये है फलाह। अधूरी कामयाबी को फलाह नहीं कहते। कामयाबी के लिए लफ्ज फाइज, फौज, फाजिया मौजूद है कुरान पाक में, लेकिन फलाह का मुकम्मल कामयाबी, जुजवी और अधूरी नहीं, नॉट पार्शियल सक्सेस, कंप्लीट सक्सेस, गोया के ईमान वाले के लिए इसमें दुनिया की कामयाबियों की भी नवीद है। इसमें पता चल रहा है कि ईमान वाला जन्नत में जा ही नहीं सकता इस दुनिया में कामयाब हुए बगैर। हम मुसलमान दुनिया में धक्के खाएं, पत्थर खाएं, टेररिस्ट कहलाएं, खराबियों को करने वाले ठहराएं, अपने आप को डिसऑर्गनाइज करें और कल जन्नत में चले जाएं, मुहाल है। सहाबाए कराम को जन्नत की खुशखबरियां क्यों मिली? क्योंकि दुनिया में भी उन्होंने खिलाफत राशिदा कायम करके दिखाई। गोया के इस लफ्ज में लिखा है कि हम मुसलमानों को आखिरत की कामयाबियों से पहले इस दुनिया की कामयाबियों की फिक्र करने की जरूरत है। आज अगर हम अपने हालात को देखें तो हमें इस आयत को पढ़कर थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, परेशान हो जाते हैं। आज मुसलमान कामयाब क्यों नहीं? इसलिए कि आज कामयाबी का बाट बदल दिया। आज कहते हैं मैट्रिक कर जो तो कर लो, जूलॉजी कर लो, डॉक्टर बन जो, एमबीए कर लो, तुम कामयाब हो। कामयाबी ये नहीं है। याद रखिए, सिर्फ दुनिया की कामयाबियों के ख्वाब दिखाकर मेहनत करवाते रहना, लोगों से उनका वक्त लगवाते रहना, ये सिर्फ एक सराब है, मिराज है, कभी हासिल नहीं होगी। मास्टर्स किया हुआ बच्चा अगर नमाज ठीक नहीं पढ़ता तो कद अफलहुल मोमिनून में नहीं आता। और आप यहाँ लोग देखिए, मोमिनून ये नहीं कहा कि कद अफलहुन नास, लोग कामयाब हो गए। इंसानों को कामयाबी मिलती नहीं है। कामयाबी और ईमान साथ साथ एक दूसरे के साथ है। जब तक ईमान बंदे के दिल, उसकी जुबान, उसके जवारिह में ना दाखिल हो जाए, कामयाबी नहीं आएगी। और फलाह और कामयाबी कोई खेल नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वल्लाही ये नहीं है। बहुत मुश्किल है कामयाब होना, कोशिश जरूरी। पहली पहले इसको क्या कीमत है कामयाबी की, चंद कीमतें नोट कीजिएगा और फिर खुद से पूछ ले। हमारे पढ़कर भी मोमिन नहीं बने, आज किस मुंह से हम ये आयतें पढ़ेंगे? क्या तो सबसे पहली कीमत फलाह की जो होती है ना, ये कुर्बानी है। कुर्बानियों की जमीन पर कामयाबियों के पौधे लगते हैं। दीन कुर्बान, स्टेटस कुर्बान, रंग रौनक की महफिलें कुर्बान, दुनियादारियों के बहुत सारे फालतू झंझट कुर्बान, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। बहुत सारी कुर्बानियां हमें खुद से लेनी होती हैं, हम वो नहीं देते। हाँ, दूसरे जब हमें किसी जगह कुर्बान नहीं, उसको पाबंद बैठ जाते हैं, मुतमईन हो। अरे अभी हालात ही साज कर नहीं है। तो याद रखिए, सबसे पहले खुद से कुर्बानी ले। जब आप कामयाब होने के लिए निकले हैं तो कुर्बानी तो आपको ही देनी है। जिस बच्चे ने डॉक्टर बनने का इरादा किया है, मेहनत कौन करेगा? वो खुद करेगा ना। रात को कौन जागेगा? वो खुद जागेगा। आप सब शादी में जा रहे हैं, वो नहीं जाएगा, कुर्बानी किसने दी? हाँ, थोड़ा सा फर्क आप सब पे आएगा। माँ भी बड़ी कुर्बानियां करती है। आप अपने बच्चे को हाफिज बनाते हैं, अल्लाह की तौफीक से बहुत मेहनत करता है बच्चा, लेकिन माँ बाप की कुर्बानी भी बहुत बड़ी है। फजर से पहले उसको उठाना उन्हीं माँ बाप के लिए मुमकिन होगा ना, जो खुद भी उठते हैं। तो याद रखिए कि दूसरे भी हमारे साथ सफर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर मैं खुद बर्दाश्त करना चाहूँ, डॉक्टर बनने वाला बच्चा खुद पढ़ने को, जाने को, लिखने को कबूल करता है, फिर ही माँ उसके लिए मेहनत करती है ना। इसी तरह हाफिज कुरान बच्चा जब ये सब कुछ खुद करता है तो माँ साथ देती है। तो यहाँ आज एक बड़ा छुपा हुआ नुकता निकल गया, हम मजबूरियों में अटे हुए लोगों के लिए, कि जिस दिल में हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सब पाबंदियां और सब तकलीफें रास्ते के रोड़े अटकते हुए रास्ता छोड़ देते हैं, शर्त यह है कि जब हम ठान लें। आप देखते हैं कि जो गाड़ी तेज चला रहा होता है, उसके सामने रुकता ही कोई नहीं, हो कहते हैं तो हमें भी खा देगा, पीछे हो जाए, इसको रास्ता दे दो, जाने दो। बिल्कुल इसी तरह जब एक इंसान अल्लाह के रास्ते में दौड़ता है, उसको ईमान के तकाजे इस जिस्म के तकाजों से बड़े हुए दिखते हैं, जिसको इस दुनिया से बढ़कर आखिरत की जन्नत की फिक्र होती है, फिर दूसरे लोग उसके रास्ते में ज्यादा दिन ठहर नहीं सकते। रास्ता रोकेंगे भी तो इतनी इसको पीछे दे दो रास्ता, वरना मुश्किल होगी। लेकिन शर्त है कि ये खूबियां मौजूद हो इंसान के अंदर। दूसरी चीज कामयाबी की कीमत, तन्हाई। मुकम्मल तन्हाई मिल जाती है फलाह से पहले। सब छोड़ देंगे आपको, तन्हा। और वो आजमाइश इतनी कीमती बन जाती है, जब आपको आपके प्यारे छोड़ जाए, तुम रूठे हम छूटे। खाली दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज पड़ता है ना, वही बीज उगता है। हम लोगों की जड़ी बूटियां अपने दिलों में इर्द गिर्द रखें और कहीं ईमान का बीज डाल जाए, ये तो कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल उस जमीन की तरह जिसमें भी जड़ी बूटियां इतनी है। देखिए, इमेजिन कीजिए, जमीन का एक टुकड़ा, किसान बेचारा इतनी मेहनत करके पैसे जमा करता है, खाद लेकर आता है, फिर एक बीज डालता है। जब उस जड़ी बूटी की मौजूदगी में खाद डालता है तो क्या होगा? वो सिर्फ उस एक मासूम से बीज की नजर नहीं होगी, किधर जाएगी? वो उसके साथ जड़ी बूटियों को भी खिला देगी। इसी तरह होता है। हम कहते हैं ना कि हम सब कुछ साथ रखते हुए चले, नहीं चल सकते, भागना पड़ता है। खाली हाथ भागते हैं वो लोग जिनको सिर्फ अपनी जान बचानी होती है। ये दुनियादारियों के तकाजे, ये वो दुनिया, ये सब कुछ बंदे को भागने से रोकती है। एक एक कर कर एक एक कांटा हटता है, और ये लाजिम है, हिजरत और तन्हाई साथ साथ। जब दिल सबसे खाली होकर अल्लाह से जुड़ता है, फिर देखिए क्या खूबसूरत मोहब्बतें आती हैं। आप तो यहाँ बड़े सिक्योर माहौल में ना आज आप पे पाबंदियां, ना आप पे मेरे पे आजमाइशें इस्लाम के नाम की। आप सोचिए, मैं आज भी ये सब रात को भी मैं सुन रही थी ये तिलावत, तो मैं सोच रही थी कि सुभान अल्लाह, सहाबा को यह आयतें सुन के लगता क्या होगा। बिल्कुल मेरे इमेजिनेशन में इन रात को मैंने सारी वो सूरतें तो सुनी, पीछे वाली सूरत जो आपने मेरे पीछे से पढ़ी है सूरत, बल्कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है कि सूरत हिजर से पीछे लेकर, सूरत हिजर से लेकर शायद 22वें पारे तक 5-6 पारे रात के सफर में सुन लिए, जहाज में मुसलसल सुने। और जब ये दो सूरतें आखिरी सुनी, हज और ये तो मैंने आपको जहन में रखा। तो मैं सोच रही थी कि आप तो इतने फल फूल चुके होंगे ईमान में, आपने सूरह हज पढ़ ली है, ये कोई आम सूरत नहीं है। वल्लाही आपकी जिंदगी में तो तय्यबा मिनल कौल आ चुका होगा, आपको तो अल्लाह की कदर आ गई। और आखिरी आयतें तो तोड़ के रख देती हैं, जाहिदु फिल्लाही हक का जिहादी ही। ये तो नहीं हो सकता कि इतना अंदर जाए तो बंदा फिर सोया, फिर ढीला, फिर ढाला, फिर मजबूरियों में, फिर ये कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह ही की एक बांट होती है। पहले भी जब एक सफर हुआ था तब मुझे याद आ रहा है कि शायद आपने मेरे बगैर सूरत मायदा सुनी थी, और यहाँ आपने अब ये सूरत सुनी है। तो मैं यही सोच रही थी, कितने खुशकिस्मत हैं आप। लोगों की मां नहीं रहती, कितने लोग उनको तसलियां देते हैं ना, लेकिन उस्ताद जरा से इधर से उधर हो, लेकिन अल्लाह का कुरान आपके लिए कितना प्यारा साथी बन जाता है जो आपके अंदर लाता है। और अगर आप ईद के बाद से अब तक अपने ईमान में इजाफा नहीं पा रहे, सुरहज पढ़ने के बाद, सुरहज ईद के बाद पढ़ी है ना, और सूरत आह से पहले पढ़ी थी, दो ही तो वीक थे सारे, फर्क नहीं पा रहे ना, तो वल्ला ही अपने दिल की मट्टी को चेक करवाए, टेस्ट करवाए। सूखी मट्टी पे मेहनत करने का फायदा कोई नहीं होता, किसान भी उस मट्टी को फिर बंजर करार दे देता है। किसी में शोर होता है, किसी में नमक होता है। आपने देखा होगा कई जमीनें ऐसी हैं मुल्कों में पड़ी, कहते हैं इससे कुछ नहीं उगेगा, जड़ी बूटियां छोड़ दो, और कभी आप वहां मेहनत करता नहीं लोगों को देखेंगे। हमेशा मेहनत उसी दिल पे होती है, उसी मट्टी पे होती है जहां कुछ पौधे उगते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे दिल इतने सख्त हो जाएं इस कुरान को पढ़ने के बाद कि हम ईमान के अमली तकाजे निभाने से पहले ही खिसक जाएं। इसलिए अल्लाह के नबी कामयाब थे कि सहाबा का वो गिरोह कितना था, 140 मुसलमान मक्का से निकले। आज अगर 6 बिलियन मुसलमानों का ईमान एक पलड़े में रख दें तो वो 140 के ईमान का पलड़ा मजबूत हो जाएगा। और याद रखिए, सहाबा को पीछे से बड़े बख्शे बख्शाए नेक लोग नहीं थे, वो तो शराब भी पीते थे, हमने तो कभी पी नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से आज तक। वो तो जिना के भी आते थे, सूद भी उनकी रग रग में था। अल्लाह के नबी ने जो तस्किया किया इन आयतों में आने वाला है, तो उस सारा सारे रुकू का खुलासा इकट्ठा ही कर रही हूँ कि जब हम कुरान की तरफ आते हैं ना, तो कोई लाजमी नहीं है कि हम बहुत पाक साफ हो, नेक, बहुत नहाए धोए, आलिमों फाजलों के में नहीं सारे पैदा होते हैं। उलमा बोझला नहीं, 17 पारे इस तरह बंदे को मांझ देते हैं कि आप देखते हैं कि वो निखर जाता है। बर्तन की मिसाल लीजिए, सामने रखे बहुत गंदा बर्तन होगा, आप उसको नरम नरम हाथों से प्यार से स्पंज लें और उसके ऊपर फेरते जाएं, क्या साफ होगा? नहीं होगा। वो नरम हाथों से साफ नहीं होगा, उसको फिर चूना लगाना पड़ता है, स्टील वूल लगाते हैं, कहीं आप उसके ऊपर विम डालते हैं, कभी कुछ करते हैं। फिर कहीं जाके उस बर्तन की असल शक्ल दिखती है। कई लोगों के घरों में अपने बर्तन देखे होंगे कि काले से आप सोचते हैं ये नॉन स्टिक है, जब दो चार दफा आप धोए तो। इसी तरह वो मुआशरे जो सदियों से बिगड़े हुए हों, उनके हालात की संगीनी इतनी शदीद हो चुकी हो कि बेटियों तक की पैदाइश को वो अपने लिए आर समझे। कितना नेचुरल है बेटी को जिबा कर देना, पैदा होती बच्ची को मार देना। वो लोग ये काम भी करते थे क्योंकि लोग वक्त और मुआशरे के गुलाम होते हैं। इंतहाई गैर फितरी काम फितरी बन जाते हैं। लोग वक्त के रिवाज पर आंखें बंद करके चलते हैं, बे सोचे समझे चलते हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी ने इसी कुरान के जरिए सहाबा की सलाह की। और याद रखिए, जब किसी मुआशरे में नया नया दीन आना शुरू होता है ना, तो हालात दुश्वार महसूस होते हैं। क्यों? क्योंकि बुनियादें बन रही होती हैं। आप इमेजिन कीजिए एक बिल्डर को, उसको एक खास किस्म का कंक्रीट दे दिया जाता है, इतना सरिया, इतना कंक्रीट, इतना रेत, इतनी रेत और इतनी ईंटें, इससे बिल्डिंग बनाओ। अब इमेजिन कीजिए कि जो ईंटें और जो मटेरियल बुनियाद में डलना है वो इस खौफ से कितनी कम हो जाएगा। चलो ऐसा करता हूं कि इधर से थोड़ा सा बचा के 5 की बजाय 6 फ्लोर बना देता हूं, कितने दिन चलेगी वो बिल्डिंग? गिर जाएगी ना। बुनियादों में ज्यादा लोहा डलता है, ज्यादा कंक्रीट, ज्यादा चीजें डलती हैं। वो कहते हैं बच भी गया, चलो 4 या 3 मंजिले बना दूंगा, लेकिन ये सिक्योर तो है। इसको इमेजिन कीजिए एक ईमान वाले की उस सोच पे जो आज ढीले ढाले नेकियों पे पड़ते हैं। तो इट्स ओके, सहाबा किराम ऐसे नहीं थे। क्यों? अल्लाह ताला कहते हैं कि कान हम बुनजान मरसूस, सूरह सब की पहली आयत, सीसा पिलाई हुई दीवार। ऐसी मुखालफतों की आंधी में सहाबा क्यों खड़े रहे? इसलिए कि उन्होंने आगे इस्लाम की बुनियादें बनना था। और याद रखिए, जब भी एडवर्स हालात आते हैं ना, तो दो काम हो जाते हैं। अल्लाह ताला इस्लाम पर, मुसलमानों पर और इंफरादी तौर पर हम सब पर मुश्किल हालात डालता है। एक, उसका मकसद क्या होता है? ईमान वालों से कमजोरियां निकल जाए। जैसे स्पंज को जेन मिलाए, स्पंज में बहुत सारा सोप भी होता है, हमें नहीं पता चलता। फिर आप उसको यूं स्क्वीज करते हैं, तो स्क्वीज करते हैं आप कहते हैं हाय अंदर इतना लिक्विड था अभी। इसी तरह जितना स्क्वीज करते जाएंगे अंदर के खोट खपट निकलते जाएंगे। एक तो ये काम होगा, और दूसरा एक और काम है, कमजोर ईमान वालों से इस्लाम पाक हो जाता है। उसी का ही ऑपोजिट है। एक ईंट लग जाए ना दीमक लगी भी किसी बुनियाद में, तो बाद में उसको बदलने के लिए पूरी इमारत गिरानी पड़ेगी। अल्लाह का ये डबल सिक्योरिटी सिस्टम है। बुनियादों में सिर्फ लोहा ही डलता है, शीशे की बुनियादें नहीं होंगी किसी बिल्डिंग की। ऊपर शीशा लगाएं, एल्युमिनियम लगाएं, कुछ लगाएं, वो सजेगा, खूबसूरत भी लगेगा। बुनियादों में शीशे जैसे नाजुक लोग लग गए तो वो नहीं चलेगी बिल्डिंग। सहाबे कराम के अंदर ये खूबियां मौजूद थी, और मोमिन तोले जाते हैं, गिने नहीं जाते। सहाबा को गिनेंगे तो उंगलियों में, ये 5 उंगलियों पे आप गिन, दोनों हाथों की उंगलियों पे गिन ले, सहाबा को गिन लेंगे, लेकिन हम उनके ईमान को तोल नहीं सकते। अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ ये बातें बताकर हम सबको अपनी फिक्र लगा दी कि तुम अपने आप को देखो किधर। अब देखिए, ये सिर्फ पहली आयत पे भी बातें हो रही हैं, कई जगह ये आयतें पढ़ी जाती हैं। मैंने खुद भी इस पे दर्स दिए, बल्कि एक बड़ा मारूफ लेक्चर है, अगर आपको फायदा हुआ कभी जन्नत के वारिस, इन्हीं आयतों पे दावा सिटी में बहुत आम हुआ। और हम रिकमेंड करते हैं बहुत जगह ये करें, क्योंकि इसमें दीन का एक अमूमी खुलासा आ जाता है। नए जगहों पर ये बहुत अच्छा लेक्चर दूसरों को सुनवाने के लिए। लेकिन अक्सर लोग क्या कहते हैं, अच्छा कामयाबी किसकी है? अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशियून। लोग नमाज के खुशू से बात शुरू करते हैं, हालांकि बात शुरू होती है अलमोमिनून। ईमान गहरा तो नमाज आसान, नमाज आसान तो लफ्ज़ निकल जाएगा, लफ्ज़ चला गया तो अल्लाह के रास्ते में देने। तो आता ही नहीं है। तो गोया के जिम्मेदारियों की एक लिस्ट अल्लाह ताला ने इसमें अदा करके हम सबको ये बता दिया कि आज का मुसलमान ये किरदार बनाए। इसकी फिक्र करो कि तुम अपने दुनिया में कामयाब इस दुनिया में होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते, तो फिर आज के दौर में मुसलमानों को किस बात पे काम करने की जरूरत है? ईमान पे। ये सिर्फ आपके मेरे वेस्ट में रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हमारे मुसलमान मुल्कों के मुसलमानों के लिए भी है, जिनके बारे में अल्लाह ताला हमें यहाँ खबरें देते हैं। आखिरी बात करके इस आयत की फिर आगे चलती हूँ। ये जो लफ्ज आया ना अफलाहा, पीछे हमने सूरह बकरा में इस पे बहुत डिटेल से बात की थी, एक मोमिन का किसान के साथ तकाबुल, याद होंगी बातें, मिसाले तो अल्हम्दुलिल्लाह याद रहती है, किस तरह वो चीरता फाड़ता है इस तरह मोमिन भी चीरता फाड़ता है, वो भी मेहनत करता है ये भी मेहनत करता है, किसान भी सुबह उठ के निकलता है घर से, मोमिन भी सुबह उठ के मस्जिद की तरफ जाता है, और उसकी भी नजरें आसमान पे लगी होती है, इसी तरह से मोमिन की भी आसमान पे लगी होती है। इसके लफ्ज में ना फाड़ने का मानी है किसी चीज को डिग करना, जैसे आप सोचते हैं, अरबी की एक कहावत है कि इन्नल हदीद बिल हदीद युफलहो, लोहा लोहे को काटता है, तो फलक का मफहूम जो है ना, ये फलका है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की कसम, कहते हैं ना फटने वाला, इसी तरह सूरत अल अनाम की आयत 95 में लफ्ज फलक इसी मफहूम में आया है, इन अल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, कि बेशक अल्लाह गुठलियों और बीजों को फाड़ने वाला है, इसी तरह फालिकुल असबाह, सुबहों को फाड़ने वाला, यानी तारीकियों के पर्दों को जाग करके सुबह को निकालने वाला रब्बे कायनात है। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि कोशिश बंदा करता है और मेहनत उसकी कबूल अल्लाह ताला करते हैं, हर पौधे और हर गुट सॉरी हर बीज और गुठली के अंदर पोटेंशियल मौजूद होता है, फिर ही किसान की मेहनत के बाद वो बाहर आता है ना, इसी तरह हम इंसानों के अंदर पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान पढ़ने वालों का पोटेंशियल तो पूरे का पूरा बाहर आ जाता है। आपको हो सकता है इन 17 पारों में अपने आप को पहचानने की बहुत ज्यादा पहचानने का बहुत ज्यादा मौका मिला हो, आज से पहले आपको बहुत सारी चीजों को नहीं पता चला होगा आपको, तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि फलाह क्या है, अपने अंदर के सोए हुए पोटेंशियल को बाहर लाने का नाम, अपनी छुपी हुई सलाहियतों को उभारने का नाम, हिडन जो इंसान के अंदर पोटेंशियल है उसको बेनकाब करना, इसी को असल में अल्लामा इकबाल ने अना कहा था, खुद ही कहा था, वो कहते हैं कि अगर तुम अपने अंदर को पा जाना, डूब के खुद में पा जा सुराग जिंदगी, वो यही था कि तेरे अंदर है बहुत कुछ बस तुझे निकालना नहीं आ रहा। इंसान बजाहर एक मादी वजूद का नाम है, इस वजूद में हड्डियां गोश्त और दीगर आसा है, लेकिन इस मादी वजूद के इतने पर्दे हैं कि इंसान की रूह और उसकी अना जो वो छुप जाती है, हम सारा दिन अपने जिस्म के अंदर हमारी रूह है जो हमारे इन मादी पर्दों में छा खो जाती है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें हमारी सलाहियतों से फायदा लेने वाला बना दे। इंसानी जिस्म के अंदर इसकी रूह जो होती है ना, ये मादी इलाफों में लिपटी हुई है, एक छुपा हुआ खजाना है जिसको खोद कर निकालने को काम में लाना है तो फलाही के समझ से गुजरना पड़ेगा। आप सोचिए, हम आज से 1.5 साल पहले 1.25 साल पहले भी तो दुनिया से जा सकते थे, बहुत हो चुके होते, ये 17 पारे जो हमने पढ़े जिसने हमारी अंदर कितनी चीजें खोल के सामने रख दी, हम इससे महरूम होते, और वो 17 पारे तो हमने पढ़े हैं बस ऐसे ही जिसको कहना चाहिए बचपने में, अब ये जो अगले रह गए हैं 12 पारे, कहने की बात है, देखिएगा 20 पारों के बाद आप यूं फिसलेंगे कि आपको एहसास ही नहीं होना कि किधर जा रहा है 10 पारा, एक एक वीक का पारा तो हो गया ना, आधा पारा हो रहा है ना एक वीक में, आगे जाके देखिए इससे भी बढ़ेगा, इस वक्त आपके शौहर की जरूरत है आपको, निकले बचपने से अपनी सोच पैदा करें, बस मैंने खुद को कुरेदना है, मैंने अपनी रूह पर पड़े हुए मादियत के पर्दों को चाक करके अपने अंदर के खजाने बेनकाब करने, मैंने सिर्फ इस हैवानी वजूद पे काम नहीं करना, मैंने अपने रूहानी वजूद को भी कुछ करना, सिर्फ हर वक्त अपने जिस्म के हाल नहीं पूछते रहना कि अब किधर दर्द है, मैंने अपनी रूह की सिसकियां भी सुननी है, मैंने सिर्फ जिस्म के खाने पीने की फिक्र नहीं करनी, मैंने रूह की गजा का भी इहतमाम करना, मैंने इस जिस्म को अपनी रूह का मकबरा नहीं बनाना, कि मेरी रूह इसी में सिसक सिसक के मर जाए। और याद रखिए, ऐसा बंदा बाहर जिंदा इंसानों में होता है लेकिन अंदर से वो मुर्दा है, जैसे अबू जहल। बाहर जिंदा था लेकिन अंदर से मुर्दा था, और बाहर एक शख्स अंधा और बहरा था, ना तो अल्लाह के नबी को पहचान सका ना उनकी दावत को सुन सका, लेकिन अल्लाह ने उसको इब्ने मखदूम का नबीना तो थे ही ना। तो याद कीजिए, सूरत नहल आयत 97 में हम पढ़ चुके हैं कि जो अमल सवाले करे, मर्द हो या औरत, फलनुख्रियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम इसे जरूर अता करेंगे एक पाकीजा जिंदगी। ये पाकीजा जिंदगी है असल में किरदार साजी, डिवेलपमेंट ऑफ करेक्टर। इस्लाम करेक्टर बिल्डिंग पे बहुत काम करता है, डिवेलपमेंट ऑफ सेल्फ, ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तो जितना अपने ऊपर मेहनत करेंगे उतना ही फायदा होगा। अल्लाह ने सबको सलाहियतें देकर भेजी थी लेकिन हम उसे फायदा नहीं उठाते। एक शेर है फारसी का जिसका खुलासा किया कि तुम्हारे अंदर एक महकता हुआ बाग है, चमन है, तुम अपने दिल के दरवाजे से दाखिल होकर इस चमन की सैर से लुत्फ़अंदोज़ उठा सक हो सकते हो। सूरह ज़ारियात आयत 21 में भी हम पढ़ेंगे, वफी अनफुसिकुम अफला युबसिरून अफला तुबसिरून, तुम्हारी तो अपनी जात के अंदर मार्फत का सामान मौजूद है, तुम गाफिल क्यों हो, देखते क्यों नहीं हो, गौर क्यों नहीं करते। तो जरूरत है कि इंसान अपने आप को पहचाने। सूफिया में एक कौल बड़ा मारूफ है, मन अरफ नफ्सहु अरफ फकद अरफ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, कि मुझे रब ने इतना प्यारा बनाया। सूरत अल हशर आयत 19 में हम पढ़ेंगे, वला तकूनु कल्लजीन नसुल्लाह फनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने इनको उनसे ही गाफिल कर दिया। तो बात का खुलासा ये निकला कि जब हम अल्लाह के नहीं बनते तो हम अपने भी नहीं बनते। आप कुछ लोगों को बहुत अरसे के बाद मिलते हैं, कभी आपने इस चीज को देखा होगा, शायद कभी शुरू में ऐसा हुआ कि आप जब लंदन आए तो फर्स्ट टाइम आप फिर 5-7 साल के बाद पाकिस्तान गए, ऐसा होता है ना अमूमन। हर बंदा तो नहीं है जो हर साल जाता हो। क्या आपको वो 5-7 साल बाद मिलने वाले रिश्तेदार एक ही शक्ल के दिखते हैं? कई लोग हैं आपको पहले से बूढ़े दिखेंगे, किसी के बाल सफेद हो जाते हैं कि वो मोटा हो गया, किसी के चेहरे पे झुर्रियां आ गई, लेकिन आप आजमा के देख लें, वो लोग जो दीन के साथ संजीदा होते हैं ना, लोग उनके बारे में ये कहते हैं, आप 10 साल पहले कि उन्होंने अपने अंदर को इस तरह उजागर किया कि जिस्म की झुर्रियां उनकी झुर्रियां नहीं रहती, अंदर ईमान की ताकत आती है। तो आपकी मेरी बीमारियां, आपकी मेरी मजबूरियां, ये सारी खुद साख्त है। आप इनको, इन गिलाफों से निकल के देखें आपके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। आप सारी बातों की साइड लेकर आप पीछे हटते हैं, फायदा आप फिर भी नहीं पाते। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम खुद को खोद दें, कुरेद दें, ऐसे अंदर से निकालें कि कब्र में जाने से पहले हमारी खैर बाहर आ जाए। जी रब।
हमने सूरह अल-हज़ में पढ़ा था कि हमें मुहब्बतीन बनना है, अल्लाह की रजा पे राजी
बशीर
रहना
المخبتين
है, और इसके बाद ही आयत नंबर 40 में अल्लाह सुभान व तआला वादा करते हैं कि जो अल्लाह के काम करेंगे तो अल्लाह सुभान व तआला
वही
उनके लिए।
आंसर बिल्कुल सही। अब देखिए, अब ये पैगाम तो हमें कुरान बार बार दे रहा है, कभी कहता है मोहब्बत बन जाओ, कभी कहता है तुम मेरे दीन की खिदमतें करो, और आज के इस एक आयत में पूरा सबक हो गया। मेहनत मेहनत मत अपने आप को फ्रेजल बनाओ, तुम शीशे के नहीं हो, तुम लोहे की कान हो, सिर्फ तुम खुद को पहचान के तो देखो। जी जी सूरत हज हमें कह के गई है कि आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं। हम खुद से पूछें कि मेरा दिल अंधा तो नहीं, चले अंधा नहीं तो कोरा तो नहीं हो गया, उसकी आंखों पे कोई पर्दे तो नहीं आ गए, मोतिया तो नहीं उतर आया, नेकी का मौका सामने और बंदे को ना मिले, और इंसान गुनाह को देखकर भी फिर ना उसके गलबे की वजह से उसकी तरफ ना पलटे, ये तो मुमकिन नहीं है। जी और कोई कोई बात जो इसको सुन के आपको फील हुआ, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। जी कोई बात कुछ नहीं, आपके दिल को आया कि हम, आपने क्या इससे सीखा, इसे के आज से
बात
इंशाअल्लाह ताला। और कोई? जी आप बिल्कुल कुर्बानी कुर्बानी। और इससे हम डरते हैं, हमें ऐसे लगता है हम नाकाम हो जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। वो तो वैसे भी रहना ही है, अकेले आए थे अकेले जाना है। चलिए यहाँ ब्रेक ले लीजिए, जितनी भी लेते हैं 15 या 20 मिनट की, तो उसके बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं। कितने मिनट की लेते हैं जी? 20 मिनट की ब्रेक है। आप क्विकली चले जाएं, ये लाइटें थोड़ी बंद कर दे।